ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा में कल से नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शिष्टाचार दल गठित करने की योजना बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिल्ली राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर विशेष अभियान चला रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और एक प्रमुख माल पहुंचाने वाली कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दिल्ली मेट्रो कार्गो सेवा शुरू करेगी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 38वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा कल से नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रिया, आचार संहिता और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, जिनमें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी शामिल होंगी। संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान फॉर डेमोक्रेसीज के विशेषज्ञ नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों के संचालित व्याख्यानों, पैनल चर्चाओं और संवादात्मक सत्र होंगे, जिसमें सुशासन, नीति निर्माण और विधायी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें इस प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और ज्ञानवर्धक बनाया जा सकेगा।
सभी विधायकों को विधायिका से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, कुशलवार से लेकर के जो भी नियम और कानून है सभी को रूल बुक भी दी जाएगी, इंटरेक्शन भी होगा और उनकी कोई क्वेरीज होंगी उसका भी रिप्लाई होगा। पर्पज इसका ये है कि एक तरह की प्रबोधन कार्यक्रम मतलब एक वर्कशॉप, जिससे कि सभी लोग सदन की कार्यवाही में पूरी जानकारी के साथ भाग ले सके। ये कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।
राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दल गठित करने की योजना बनाई है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना में ये बताया गया कि प्रत्येक जिले में 2 दल होंगे, जिनका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त करेंगे। प्रत्येक दल में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 8 कांस्टेबल, जिनमें 4 महिला और 1 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होगा। अधिसूचना में कहा गया कि वे सादे कपड़ों में काम करेंगे, संवेदनशील इलाकों में गश्त करेंगे, सार्वजनिक परिवहन की जांच करेंगे और पीड़ितों को मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं के बीच सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण को बढ़ावा देना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जो लोग लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रोहिंग्याओं का मामला लोगों के सामने आ रहा है और जगह जगह पर रोहिंग्याओं ने खाली जमीन पर कब्जा किया है और उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी एक राजनीतिक दल ने किया है। दिल्ली पुलिस की इस बात को मैं स्वागत करता हूँ कि वह इस प्रकार के लोगों को, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर नहीं रहकर इनको तिहाड़ जेल में जाना चाहिए। पुलिस की पहल बहुत अच्छी है।
दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रमुख मुद्दे जैसे सड़कों और नालों की मरम्मत, सीवर सफाई और जल निकासी प्रबंधन, जल भराव की समस्या का समाधान, अवैध कब्जों पर कार्रवाई और लंबित विकास परियोजनाओं में तेजी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि विकास उनके सरकार की प्राथमिकता है और अगले 100 दिनों में जनता को जमीन पर ये बदलाव नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिल्ली राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर विशेष अभियान चला रहा है। ये अभियान आज से 22 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें उन सभी बच्चों का टीकाकरण होगा जो अभी तक बच गए हैं। इसका उद्देश्य बचे हुए ड्रॉप आउट, टीकाकरण से इनकार करने वाले, घुमंतू समुदायों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंच बनाना है। सरकार ने सभी माता पिताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करें और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए समय पर टीके लगवाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने आज रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी के क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अधिकृत आर्थिक पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। इसमें भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिससे आपसी व्यापार और निवेश की संभावना को बढ़ावा मिलेगा।
दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है।
प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री लक्सन ने मुख्य भाषण में कहा कि भारत और न्यूजीलैंड दुनिया के आर्थिक रूप से सबसे गतिशील क्षेत्र का हिस्सा होने के लिए भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का 2/3 हिस्सा होगा और वर्ष 2030 तक दुनिया के 2/3 मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस क्षेत्र में होंगे। इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का विषय है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ये केंद्रीय बजट विफल बजट है। उन्होंने रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं और रेल दुर्घटनाओं के बारे में सरकार से सवाल किए। भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2,65,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस उत्सव में कई रोमांचक खेल और फिटनेस चैलेंज शामिल हैं, जिनमें रस्सी कूद, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, पुशअप और स्क्वाट प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ उपस्थित आगंतुकों के लिए पोषण और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित निशुल्क स्वास्थ्य मूल्यांकन की पेशकश कर रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रविवार को किया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. देवेंद्र प्रधान 84 वर्ष के थे। डॉ. प्रधान के परिवार में उनके बेटे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पत्नी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और एक प्रमुख माल पहुंचाने वाली कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली मेट्रो माल ढुलाई सेवा शुरू करेगी। ये साझेदारी दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और लॉजिस्टिक्स समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल है। इस समझौते के तहत माल पहुंचाने वाली कंपनी मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से माल ढुलाई का कार्य करेगी, विशेष रूप से उन समय में जब मेट्रो ट्रेनों में भीड़ कम होगी। इस पहल का उद्देश्य समय पर सामान की तीव्र और अधिक विश्वसनीय आवाजाही को सुनिश्चित करना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय परियोजना स्थल पर टनल बोरिंग मशीन ब्रेक थ्रू TBM समारोह का आयोजन करेगा। ये समारोह मेट्रो नेटवर्क के निर्माण में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। TBM की सफलता सुरंग निर्माण कार्य में एक महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने को दर्शाती है, जो राजधानी में मेट्रो प्रणाली के निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह समेत दिल्ली मेट्रो के कई अधिकारी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस की मदद से शिक्षा निदेशालय राजधानी के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण अभियान 21 मार्च से 29 मार्च तक विभिन्न विद्यालयों में चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस प्रशिक्षण अभियान में छात्राओं को पेन, दुपट्टा, स्टॉल समेत कई चीजों से बचाव के तरीकों को सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण अभियान के दौरान पैड, हैंड गार्ड, चेस्ट गार्ड समेत अन्य सामग्री की एक किट उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली और पूर्व जिला के विद्यालयों की छात्राओं को प्रशिक्षण मिलेगा। इसके बाद अलग अलग चरण में सभी जिला स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण अभियान को लेकर विद्यालयों को प्रतिदिन की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को देनी होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि थाना प्रभारी की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो योग्यता आधारित परीक्षा है। पुलिस ने कहा कि कल होने वाली इस परीक्षा में SHO को साइबर कानूनों और साइबर अपराध से निपटने की प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। इस अवसर पर मीडिया के साथ बातचीत में दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त छाया शर्मा ने बताया कि नई भर्ती पहल में पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल की क्षमताओं को बढ़ाना है।
फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा SHO जिसको साइबर लॉज के बारे में, साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के प्रोसीजर के बारे में नॉलेज ना हो, और अगर वो साइबर SHO बन जाता है तो हो सकता है कि उसको काम ही नहीं आए और वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, एक ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इन सिलेक्शन वो होनी चाहिए। यहाँ प्योर मेरिट्स की बात हो रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छी पहल लगी।
दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के अंतर्गत 7 बांग्लादेशी अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी जिले के जिला पुलिस आयुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत आए थे और वे पुलिस की नजर से बचने के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपने 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज से 19 मार्च तक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहा है, जो नई दिल्ली स्थित संवेद सभागार में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं का शानदार प्रदर्शन होगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
स्थापना दिवस समारोह में कई प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें डॉक्टर सुनल मानसिंह, राम बहादुर राय, डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा, डॉक्टर भरत गुप्त, डॉक्टर सचिदानंद जोशी और डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम शामिल हैं। आज इस समारोह में सांस्कृतिक अध्ययन और विकास केंद्र के सहयोग से हवेली संगीत पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कल इस सांस्कृतिक उत्सव में आदि अनंत नामक एक समकालीन भारतीय नृत्य प्रस्तुति होगी, जो पारंपरिक मार्शल आर्ट करारे पट्टू और छाऊ नृत्य का मिश्रण है। संगीता शर्मा द्वारा निर्देशित और ग्राफ किया गया या प्रदर्शन प्राचीन और आधुनिक कलात्मक अभिव्यक्तियों का मिश्रण प्रस्तुत करेगा। ये भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन भारत की कलात्मक विरासत की विविधता और समृद्धि को देखने का एक अवसर है। बुधवार तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव में आगंतुक शाम 6 बजे से निशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा और दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आसमान के साफ रहने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा में कल से नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शिष्टाचार दल गठित करने की योजना बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिल्ली राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर एक विशेष अभियान चला रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और एक प्रमुख माल पहुंचाने वाली कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 38वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।